नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आवेदन करने वाली सभी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए राशि दी जाएगी। कृषि विस्तार चैटबॉट सुविधा की शुरुआत करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। चैटबॉट से किसानों को एक ही मंच पर मिलेंगी सभी सूचनाएं। बीपीएससी ने चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की संभावित तिथि जारी की। 22 से 27 सितंबर के बीच परीक्षा आयोजित होने की संभावना। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और नीदरलैंड्स आमने सामने। यह मैच शाम 7 बजे से अहमदाबाद में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत उन सभी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए राशि दी जाएगी जिन्होंने आवेदन किया है। विधानसभा में विभागीय बजट अनुदान पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो महिलाएं अपना रोजगार बेहतर तरीके से चलाएंगी उन्हें 2 लाख रूपये तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।
अभी तो कल 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रूपया देंगे। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हमारे मुख्यमंत्री संसदीय कार्य मंत्री जी को उपस्थिति में उनके खाते में भेजा गया। और भी जो छूटे हुए लोग हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। सबके खाते में जो जो आवेदन दिए हैं और जिनका काम सही लगेगा सबके खाते में 10-10 हजार रूपया देने का काम अभी तत्काल कर रहे महोदय, और उसके आगे भी चलेंगे।
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि प्रदेश के सभी श्रेणी के शिक्षकों को एक समान आवासीय भत्ता दिया जाएगा। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में श्री कुमार ने कहा कि अब तक 90% मामलों में एचआरए की विसंगति दूर कर ली गई है। शेष 10% मामलों में जल्द ही विसंगति को दूर कर लिया जाएगा। प्रदेश में बायोमेडिकल कचरा निस्तारण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधान परिषद में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। श्री पांडे ने बताया कि इस संबंध में 4 एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान में ये एजेंसियां पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया जी में वैज्ञानिक तरीके से बायोमेडिकल कचरे का निस्तारण कर रही है। बिहार कृषि विस्तार चैटबॉट सुविधा की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि बिहार कृषि मोबाइल ऐप के साथ भारत विस्तार का समेकन कर दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान अपने मोबाइल फोन से एक ही कॉल में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। श्री यादव ने इस पहल को कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को फसल आधारित वैज्ञानिक सलाह, मंडी मूल्य और मौसम संबंधी जानकारी मिलेगी।
किसानों को बहुत अधिक सुविधा मिलेगी, तुरंत उनको जानकारी मिलेगी, टेलीफोन के माध्यम से ही जानकारी मिलेगी, जिससे वो किसान अपने समस्या का निदान कर पाएंगे, उनका उत्पादन करने की जो क्षमता है उस क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे।
गौरतलब है कि कल केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत विस्तार का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य किसानों को स्मार्ट, सशक्त और सूचना समृद्ध बनाना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पश्चिम चंपारण और भागलपुर में डॉपलर वेदर रडार लगाएगा। कल पटना में संवाददाताओं से बातचीत में इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक नीलेश एम देसाई ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसरो मौसम सेवा केंद्र और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि आने वाले दिनों में बिजली गिरने की सूचना 1 से 2 घंटे ही पहले लोगों को दी जा सके।
तो वो ऐसा उपग्रह बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, मतलब के जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के बारे में पूर्व जानकारी दे पाए। बाढ़ आएगी कि नॉर्मल बारिश होगी तो वो सब जानकारियां भी देते हैं कि बिजली गिरने से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है खास करके बारिश के मौसम में, तो वो ना हो उसके लिए, और इसके लिए पहले से हम आगाह कर दें।
श्री देसाई ने कहा कि बिहार में नेपाल से आने वाली बाढ़ को लेकर इसरो का रडार बेहतर काम कर रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग ने चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की संभावित तिथि जारी कर दी है। आयोग की ओर से जारी संशोधित परीक्षा कैलेंडर के अनुसार ये परीक्षा 22 सितंबर से 27 सितंबर के बीच आयोजित होने की संभावना है। किसी अन्य परीक्षा की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गौरतलब है कि आयोग ने पिछले दिनों कहा था कि चौथे चरण के तहत विभिन्न विभागों में 46,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी और इसके लिए जल्द ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने विद्यालय अध्यापक के लिए चयनित उन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का एक बार फिर अवसर दिया है जो पहले विभिन्न कारणों से काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए थे। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित विद्यालय अध्यापक के लिए 1,000 से अधिक अभ्यर्थी विभिन्न कारणों से काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए थे। मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन कल प्रदेश भर से कदाचार के आरोप में 5 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया। वहीं दूसरे के बदले परीक्षा देते हुए 9 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपालगंज से 2 और नवादा, मधेपुरा तथा अररिया जिले से 1-1 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए, जबकि भोजपुर जिले से सबसे अधिक 4 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। वहीं रोहतास, अररिया, सारण, सिवान और सहरसा जिले से 1-1 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। पटना उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि दूसरी पत्नी के संतान भी अनुकंपा पर नौकरी पाने के हकदार हैं। न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ के आदेश को निरस्त करते हुए यह फैसला सुनाया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना पर जा सकते हैं। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और नीदरलैंड्स आमने सामने होंगे। यह मैच शाम 7 बजे से अहमदाबाद में खेला जाएगा। वहीं प्रतियोगिता के एक अन्य मैच में आज दक्षिण अफ्रीका का सामना संयुक्त अरब अमीरात से होगा। ये मैच सुबह 11 बजे से खेला जाएगा। इधर दोपहर 3 बजे से कोलंबो में पाकिस्तान और नामीबिया के बीच मुकाबला होगा। इस बीच कल रात हुए एक मैच में नेपाल ने स्कॉटलैंड को 7 विकेट से पराजित कर दिया। नेपाल ने 171 रन का लक्ष्य 19 ओवर और 2 गेंद में हासिल करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। T20 विश्व कप में 12 साल के बाद नेपाल की यह पहली जीत है। इधर जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच बारिश के चलते रद्द हुए मैच के कारण ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। वहीं पूर्व चैंपियन भारत पहले ही ग्रुप ए से सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। चंडीगढ़ में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट में बिहार महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है। जमुई में आयोजित पाल दंगल प्रतियोगिता में बेगूसराय की चुगनू ने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं जिले की काजल को प्रतियोगिता में 3रा स्थान मिला। मुजफ्फरपुर जिले के मीठनपुरा थाना क्षेत्र के बेला रोड में कुख्यात अपराधी पप्पू सहनी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराधी ने बेला थाना में पदस्थापित ASI विकास कुमार सिंह को गोली मार दी थी, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई में अपराधी की मौत हुई। पप्पू सहनी ATM ठगी गिरोह चलाता था और उस पर कई मामले दर्ज थे। इधर ASI विकास कुमार सिंह स्थानीय अस्पताल में इलाजरत हैं। नीट छात्रा की मौत के मामले में CBI की टीम ने कल एक बार फिर मृतका के पैतृक आवास पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की। जांच एजेंसी ने मृतक छात्रा के भाई से लंबी पूछताछ की है, साथ ही उसके मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया है। विशेष निगरानी इकाई की टीम ने मुजफ्फरपुर के अनुमंडल कृषि पदाधिकारी हिमांशु कुमार और उसके ड्राइवर राम बाबू राय को 50,000 रूपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी खाद दुकान की जांच में राहत देने के नाम पर रिश्वत ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने किशनगंज जिला खनन कार्यालय के 2 कर्मियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ब्यूरो ने लिपिक अशोक कुमार चौधरी को 8,000 रूपए और परिचारी सरोज कुमार सिंह को 7,000 रूपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। पटना जिले के विक्रमगंज में एक तिलक पार्टी से लौटने के 24 घंटे के अंदर दुल्हा के भाई समेत 5 लोगों की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नालंदा जिले के एकंगर सराय जहानाबाद मुख्य मार्ग पर तेल्हाड़ा कठार पुल के पास सड़क हादसे में 3 चचेरे भाइयों की मौत हो गयी। मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कोतवाली चौक के पास से पुलिस ने नकली नोट के कारोबार से जुड़े कुख्यात अपराधी अबुल ईमान को गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रहमत बाग में पुलिस ने छापेमारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से निर्मित अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरणों के साथ 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 2 अभ्यर्थियों को पटना से गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ने लिखित परीक्षा में अपनी जगह दूसरे को परीक्षा देने के लिए बैठाया था। मुंगेर जिले के वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर स्थित एक बागीचा से पुलिस ने 400 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अररिया के श्रम भवन में आज जिला स्तरीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में विभिन्न निजी कंपनियां युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी। मेले का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित है। यह मेला युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, फ्रांस हथियार और तकनीक दोनों देगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में करार, राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा भारत हमारा बेहद भरोसेमंद साझेदार। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्य में 468 करोड़ रुपए निवेश पर एमओयू, आईआईटी पटना में बनेगा रिसर्च पार्क, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट एंड एक्सपो में सहमति पत्र पर किया गया हस्ताक्षर। प्रभात खबर लिखता है, शिक्षा विभाग में 45,000 परिचारी और 935 एईटीओ की नियुक्ति जल्द। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, पैतृक जमीन पर नया घर बनाने वालों को वंशावली पर ही मिलेगा बिजली कनेक्शन, अपने नाम की स्वामित्व रसीद लेने की अनिवार्यता समाप्त। राष्ट्रीय सागर ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार लिखता है, शपथ समारोह में शामिल हुए ओम बिरला। आज अखबार की सुर्खी है, 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 22 से 27 सितंबर तक होगी परीक्षा। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आवेदन करने वाली सभी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए राशि दी जाएगी। कृषि विस्तार चैटबॉट सुविधा की शुरुआत करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। चैटबॉट से किसानों को एक ही मंच पर मिलेंगी सभी सूचनाएं। बीपीएससी ने चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की संभावित तिथि जारी की, 22 से 27 सितंबर के बीच परीक्षा आयोजित होने की संभावना। और आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और नीदरलैंड आमने सामने, यह मैच शाम 7 बजे से अहमदाबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।